उसको सीरियस इंजरीज आई उससे पहले जो है, तो कुछ दिन पहले जो है उन्होंने, नहीं उसके बाद सॉरी नेक्स्ट डे संडे को, यानी संडे को फिर से जनाब एक शूटिंग हुई डैनफर्थ के एरिया में, और इसमें भी जो है लोगों को एक एक बंदा जो है उसकी डेथ हुई और काफी सारे जो है इंजर हुए। तो अब ये जो वीकेंड पे जो ये शूटिंग्स चलती रही ना, उस पे जॉन टोरी साहब बहुत गुस्से में थे।
110 शूटिंग्स आइदर किलिंग और
इंजरीज बाय शूटिंग,
इंजरीज बाय शूटिंग जो है वो जो है 110 दिस ईयर, दिस इज हाई, वेरी हाई,
वेरी हाई। और अभी साल तो पूरा हुआ ही नहीं, होया ही नहीं है ना, अभी तो
6 महीने
हुए हैं। तो उसके अंदर तो वो कह रहे हैं जी कि ये क्या हो रहा है, ये सिटी का पीस कौन खराब करने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन किया, उनकी पुलिस की तारीफ भी की है कि उन लोगों को छोड़ना नहीं है आपने, और वो इनके पीछे भी लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये पीस आप क्यों इसका सिटी का यहां पे, क्योंकि अब बहुत सारे 2 साल के बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं। आप अगर जॉन टोरी साहब की ट्विटर पेज देखें तो उसके ऊपर आप देखेंगे बेशुमार कोई 3-4 इवेंट्स जो है उनके ऊपर खुद वो पहुंचे हुए थे और वो इवेंट्स अटेंड कर रहे थे। तो और वो सारे स्ट्रीट्स के ऊपर थे, राइट, वो सारे जो बाहर अब हो रहे हैं टोरंटो में। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी क्या, अच्छा तो ये अब कुछ जो डेटा आया है उसमें कहा उन्होंने जी कि 2019 में वैसे 240 जो थी ये शूटिंग्स की, या तो डेथ्स थी या इंजरीज थी, ये नंबर जो था थोड़ा सा नीचे आ गया था 2020 में, 178 पे आ गया था, और फिर जो है ये 2021 में 163 पे आ गया था। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ऐसे ही जो है अनअबेटेड जाने दें। और वो कह रहे हैं कि जी 2012 में कंपेयर अगर हम इसको करें तो ये बहुत ही कम था, जस्ट ओवर 114 के करीब कोई लोग थे जो कि ये ऐसे हुआ था। तो वो कहते हैं जी कि ये इसलिए भी इनका कंसर्न है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इनसे पैसे वापस ना मांग ले, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने $12.3 बिलियन इनको सिर्फ इस चीज के लिए दिए हैं कि जी क्राइम्स आपने कंट्रोल करने हैं टोरंटो में,
गन कंट्रोल,
कंट्रोल करना एंड गन्स कंट्रोल, हाँ गन्स कंट्रोल एंड क्राइम कंट्रोल, ये वायलेंट क्राइम कंट्रोल।
एग्जैक्टली।
तो वो जो है वो कह रहे हैं जी कि ये इनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इनको उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ को भी अपने साथ गवर्नमेंट में मिलाएं जो कि यूथ जो है उसको सीधे रास्ते पे लगाए, और उनको बोले कि आपने गन वायलेंस में हिस्सा नहीं लेना। तो
एजुकेशन
जो है अवेयरनेस क्रिएट करें तो आप क्या कर रहे हैं। तो ये गम असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये है कि कहीं फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसे ना वापस मांग ले।
जी
हाँ जी।
6:01 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, फौरी तौर पर प्रोग्राम में वापस आएंगे बकिया की न्यूज स्पॉन्सर्स के पैकेज के बाद।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
ओ माया मेहंदी रोका या ब्याह दा होवे मौका, प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वालियां दा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, 100 to 700 तक दी कैपेसिटी, ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो अते अपनियां पार्टियां बुक कराओ, 416-433-9191, 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
ओ बल्ले भाई बल्ले, मैं तो बन गई ओनर अपनी ट्रकिंग कंपनी की, क्योंकि मैंने ली थी ट्रेनिंग उस कंपनी से जिसके हैं 500 से ज्यादा 5-star गूगल रिव्यूज। नाम है मेज कंसल्टेंसी। तो अगर आपको भी ट्रक डिस्पैचर या फ्रेट ब्रोकर स्पेशलिस्ट बनना है तो आज ही ट्रेनिंग के लिए मेज कंसल्टेंसी को कॉल करें। नंबर है 9058262919, दैट इज 9058262919। बल्ले बल्ले।
ब्रैम्पटन शहर पहली कम्युनिटी सेफ्टी एक्शन प्लान को शुरू करने पर खुशी का इजहार कर रही है। ये एक्शन प्लान ब्रैम्पटन में कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना और उनको महफूज रखने में मदद करेगा। हमारे साथ शामिल हों और हमें अपनी राय से भी आगाह करें, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए brampton.ca/community-safety।
जी शादी जी।
हाँ जी। अच्छा महेश भाई, एंगस रीड का आज एक एंगस रीड इंस्टीट्यूट का आज एक सर्वे आया है और उसमें उन्होंने कैनेडियन से पूछा है कि भाई आप क्या फोर्थ डोज लगवाएंगे या सेकंड बूस्टर आप वैक्सीन का लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। हाँ जी, तो इसके अंदर जो है 1 in 5 कैनेडियंस जो हैं, और सॉरी ऑन्टेरियंस का उन्होंने लिया नॉट कैनेडियन, उन्होंने कहा जी कि हम सेकंड बूस्टर नहीं लेंगे, यानी कि 62% जो हैं वो कहते हैं कि जी ये वैक्सीन तो इधर आ जाएंगी, और 20% ने कहा जी हमको पता नहीं है कि आएंगी या नहीं, 18% ने कहा लेकिन कि हम बिल्कुल बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं, 61% ने कहा कि भई अगर इन डोजेस को बढ़ाया जाएगा 18 प्लस के लिए तो ये यहां पे आ जाए लेकिन हम श्योर नहीं हैं इतने ज्यादा, तो 20% जो थे उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि भई हमको तो अब कोई दूसरा कोई ऐसा नीड नहीं है कि हमको दूसरे बूस्टर लेने की जरूरत है। हाँ वो जो 18 प्लस के लिए वो कह रहे हैं, हाँ ठीक है उसके लिए अगर डोजेज आ जाते हैं तो ठीक है वो कर लें, और हमारे लिए कोई इतनी अब जो है वो माने नहीं रखती है जो चौथी डोज जो है वो। 19% ने कहा जी कि फोर्थ जो वैक्सीन की डोज है वैसे तो वो हमें लग रहा है कि फॉल विंटर से रोल आउट वो करेंगे। 70% ने कहा कि हम बूस्टर हर साल तो लेने को तैयार हैं अगर नेसेसरी है, अगर नेसेसरी है, अगर बूस्टर की जरूरत है, अगर रिकमेंडेड है तो हम ले लेंगे। 30% ने कहा जी कि नहीं कोई ऐसी हर साल लेने की अब ये जरूरत नहीं है। इसी तरह 70% ने कहा कि जी ये जो है वैक्सीन ये वैसे बड़ा इफेक्टिव वे हैं टू यू नो कंट्रोल दिस, लेकिन 30% ने कहा कि नहीं कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग बिलीव ही नहीं करते ना कि वैक्सीन इन द फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए। तो ये इस तरह से 3-4 उन्होंने क्वेश्चन किए थे कि जी 18 प्लस को मिलने चाहिए, हाँ उनको मिलने चाहिए, जी आपको सेकंड बूस्टर लगना चाहिए, ज्यादा ने कहा कि नहीं लगना चाहिए, कुछ ने कहा लगा, फिर उन्होंने कहा जी कि अब आपको हर साल बूस्टर लेने की जरूरत है, हाँ शायद हर साल लेने की जरूरत है। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे इस सिलसिले में जो उन्होंने एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने किए थे, तो उनके जो है ये कैनेडियंस जवाब दे रहे थे। इसी तरह का एक और भी सर्वे आया है और ये एकॉन कैनेडा ने किया है, और इसके ऊपर उन्होंने पूछा है कोई हंड्रेड्स ऑफ कैनेडियंस से कि आपका क्या ख्याल है कि जो लैंड ओनर्स जो प्रॉपर्टी उनसे आप अगर रेंट करते हैं तो वो बेटर है, या कि जो कॉरपोरेशंस आपको देती हैं रेंट पे हाउसेज वो बेटर हैं। तो बहुत सारे लोगों ने लार्ज कम्युनिटी जो वो है जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है 65%, उन्होंने कहा कि नहीं जो प्राइवेटली ओन्ड या कोई लैंडलॉर्ड जो है जो प्रॉपर्टी ओन करता है उसकी हालत भी अच्छी होती है और वो अच्छी है, जबकि कॉरपोरेशंस जो हैं वो जो हमें ये बिल्डिंग्स और हाउसेज देती हैं तो उसके अंदर पेस्ट के प्रॉब्लम्स हैं, कॉकरोचेज हैं, और वो कहती हैं जी सीढ़ियों के ऊपर जो है वो यूरिन और फीसेस तक पड़ा होता है और टूटी हुई सीढ़ियां होती हैं और एलिवेटर्स खराब होती हैं। तो इस तरह की उन्होंने जो है बहुत सारी बातें की हैं और वो कहते हैं जी इसके बावजूद भी जो है रेंट्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, तो दिस इज एक्चुअली एडिंग टू द वोज ऑफ यू नो रेंटर्स। लेकिन अब क्या करें, वो कहते हैं जी घरों की कीमत जो है वो तो गिर गई है लेकिन जो मॉर्गेज के रेट्स हैं वो बहुत ऊपर चले गए हैं, तो अब हम यू नो उस कैच 55 सिचुएशन में है कि घर लें कि ना लें, या और रेंट इतने ऊपर चले गए हैं कि रेंट लें कि घर ही ले लें, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। वेरी कंफ्यूजिंग मार्केट और बहुत डिफिकल्ट लोगों के लिए हो गया ना, क्योंकि रेंट बेतहाशा है लेकिन वो पैसा सारा जाया हो रहा है, रह तो सकते हैं रेंट पे लेकिन वो पैसे सारे जाया हो रहे हैं, घर अगर ले लेंगे तो मॉर्गेज बहुत बढ़ जाएगी तो मॉर्गेज दे नहीं सकते हैं तो क्या करें यू नो। तो ये इस तरह की वो आगे हैं सिचुएशन में। अच्छा जनाब, आज एक बहुत ही मिरेकुलस किस्म का यहां पे जो है कुछ अरसे से सर्जरीज चल रही थी उसका आज जिक्र किया गया है। एक 12 साल की बच्ची थी जो कि हार्ट एलमेंट के साथ पैदा हुई थी। हाँ जी, तो उसका नाम है बिल्कुल, तो उसका नाम है मरियम तनूस, लेकिन उसको कहते हैं मिरेकल मरियम। उसकी वजह यह है जी कि ये जिस वक्त पैदा हुई थी तो इसको जो था वो था कंजेनिटल हेल्थ डिजीज थी, इसको कंजेनिटल हेल्थ डिजीज थी इसको, और ये इसको कहा गया था कि जी इसका हम ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना ये बच्ची बचेगी नहीं थी। आप इमेजिन करें डॉक्टर्स कहते हैं, और इसकी मां जो है वो तो बड़ी बेचारी वो खुश होती है और थैंकफुल है इनको डॉक्टर उस्मानी होंजो से जिन्होंने इनका किया था। इसकी मां जो है लिंडा एंतवान अद्वार, उसका तो वो बड़ी थैंकफुल है इनकी। वो कहते हैं जी डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर उस्मानी के जिस वक्त 3 साल की उम्र में हमने इसका हार्ट ऑपरेशन किया था तो वो इतनी बड़ी थी मशीन कि वो हमको इसका वुंड ओपन रहने दिया था क्योंकि ये फिट नहीं हो रहा था उस जगह पे, लेकिन इस बच्ची को जिंदा रखना जरूरी था। फिर उसके बाद हौले हौले हमने वो जो है वो बच्ची उसको ऐसे कर दिया कि वो उसको होल्ड मतलब वो उसको कैरी कर सकती थी राइट, वो जो हमने वो इसका हार्ट ट्रांसप्लांट की वो मशीन लगाई थी। फिर वो कहते हैं जी एक 7 साल की उम्र में फिर हमने किया, लेकिन 11 साल की उम्र में आते आते हमें पता चला कि वो तो सारा जो है वो फेल हो रही है वो सारी मशीन। तो फिर अब इनका जो है इनको आईसीयू में इस बच्ची को लेकर आए थे और आईसीयू में इसको रखा था, क्योंकि ये जो मशीन और ये चीजें डेवलप की गई हैं ये तो एडल्ट्स के लिए की गई है ना, बच्चों के लिए तो अभी तक ये की नहीं है ये मशीनें और चीजें। तो वो कहते हैं जी आईसीयू में इसको रखा और हमने उसको बताया कि एक सेकेंड ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो फिर जनाब वो सेकेंड ट्रांसप्लांट किया और फिर वो सेकेंड जो थी सेकेंड टाइम जो था वो फिर से वो जो है वो किया और वो जो है अब बच्ची जो है ठीक है। और आप अगर जो हमारे टीवी देख
12 साल की बच्ची है वो यंगेस्ट
इन कैनेडा, यस,
इसको कहते हैं टोटल आर्टिफिशियल हार्ट, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट,
यस यस यस,
नथिंग टू डू विद किसी और का हार्ट लेके लगाया हो या ट्रांसप्लांट,
नहीं 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 नहीं,
ये टोटल आर्टिफिशियल हार्ट है और इसको जो है फर्स्ट टाइम इन कैनेडा इस बच्ची को किया गया
हॉस्पिटल ऑफ सिक किड्स जो है उसके
वन ऑफ द बेस्ट किड हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड,
यस यस,
तो वहां पर उन्होंने किया है एंड इट्स अमेजिंग।
तो ये जब मैंने स्टोरी पढ़ी मैंने कहा ये चेस्ट उन्होंने ओपन कैसे रहने दिया ना,
yes.
वो कहते हैं हमने चेस्ट को ओपन रहने दिया एंड इट वॉज, मैंने कहा बच्चे के लिए कितना पेनफुल होगा माजद भाई, माई गुडनेस, क्योंकि वो उस वक्त बच्ची ये 3 साल की थी जब इसकी पहली ओपन हार्ट सर्जरी उन्होंने की है। ओ माई गुडनेस, ठीक है। अच्छा जी एनवायरमेंट कैनेडा जो है वो कह रहा है कि अभी गर्मी ठीक से आई नहीं है, है माजद भाई गर्मी अभी और आएगी।
नहीं गर्मी यहाँ पर क्या आएगी, पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका भरा पड़ा है जी।
तो ये जनाब एनवायरमेंट कैनेडा ने कहा है कि जुलाई और अगस्त के अभी वार्म दिन आने बाकी हैं और मैनिटोबा के अंदर तो ऑलरेडी संडे के दिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो था वो टेम्परेचर कर रहा था और इसके अलावा रेजाइना, नॉर्दर्न ऑन्टेरियो, कैलगरी, जब कैलगरी स्टैम्पीड चल रहा था ना उसके बीच में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था और फिर सस्कैचुअन में, फिर लिटन में, बीसी के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है वो हाई टेम्परेचर है और बीसी के अंदर जो वो इलाका है लिटन का वहां पे तो इसलिए भी ज्यादा हीट हो गई है कि वाइल्ड फायर्स वहां पे शुरू हो गई है।
आपको पता है कि 1.5 साल पहले वहां पर
कितनी नुकसान हुआ था, यस, कैसे नुकसान हुआ था, तो वो फिर जी अब फिर से कोई तकरीबन 1700 एकर्स का जो एरिया है वो फिर से
एकर्स नहीं हेक्टर्स
हेक्टर्स हेक्टर्स सॉरी हेक्टर्स का जो एरिया है वो फिर से जो है उसके अंदर अंडर वाइल्ड फायर्स है। तो ये जनाब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो जनाब उसी से रिलेटेड यूरोप के अंदर भी जो है बेतहाशा गर्मी आ गई है। हाँ जी यूके के अंदर बेतहाशा गर्मी है, ठीक है जी, वहां पे इसके अलावा स्पेन में, पुर्तगाल में, फ्रांस में और यहां से हजारों ही लोग जो हैं स्पेन में और जो फ्रांस के डिफरेंट शहर जो हैं और इलाके जो हैं उनसे निकाले गए हैं क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट के अंदर ब्लेज भी लग गई हुई है और वो कहते हैं जी कि स्पेन के एक इलाके में और फ्रांस के दूसरे इलाके में कोई 28,000 से 30,000 लोग जो हैं उनको निकाला गया है डिफरेंट इलाकों से ऑल टुगेदर, यानी कि यानी कि ये एक ही टाउन से हैं, ये डिफरेंट टाउन जो हैं उनसे हैं और फिर वो कहते हैं जी कुछ जो फॉरेस्ट हैं वो तो अब बिल्कुल काले हो गए खासतौर पर स्पेन के अंदर जो है उसमें आग इतनी भड़क गई और फैल गई है। और आज मंडे एज वी स्पीक मंडे के दिन आज का दिन जो था यूके का हॉटेस्ट डे था, हॉटेस्ट डे था और
so
वो कहते हैं जी सो कॉल्ड हॉटेस्ट था, अभी अभी और
सो फार
अभी आएंगे ना और वार्म दिन आएंगे तो कहते हैं आज जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वहां पे काफी लोगों को
वो क्या है कि इंग्लैंड में मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस डोंट हैव एयर कंडीशंस,
नहीं 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 नहीं, यस,
तो वहां पर वार्म के लिए रखते हैं, कोल्ड के लिए उन्होंने अभी तक नहीं रखा था,
प्रोविजन ही नहीं बनाई है
और स्पेशली जो लोग जिनके पास डिजीज है कुछ हार्ट डिजीज वगैरह ऐसे है उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल जगह है।
हाँ बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं जी आज इतनी ज्यादा गर्मी थी कि रेलवे सर्विसेज बंद रही और जो हेल्थ ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी जो है बहुत ज्यादा एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय पर रखी थी, वही आप वाली बात कि जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और हैं तो एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय पे थी कि जैसे ही कोई इमरजेंसीज आएंगी हम फौरन लोगों को जो है हॉस्पिटल में लाना शुरू करेंगे। तो इतनी ज्यादा जो है वहां पे हीट हुई हुई है। रॉयटर्स की जनाब आज एक खबर है और इसके मुताबिक जो रशिया का ये जो है गैज़प्रॉम जो कि देता है गैस जो है और उसको सारे यूरोप को, उसने आज बहुत ही क्लियरली इनको कह दिया है कि जी हमारी मेंटेनेंस वर्क चल रही है तो इसलिए हम जो है रोक रहे हैं आपको गैस यूरोप को। और वैसे तो उन्होंने कहा है रशिया ने कि थर्सडे तक ये सारा कुछ जो है वो हो जाएगा, हालांकि जर्मनी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जर्मनी कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो अभी तक कैसे, क्योंकि जो वो है कनाडा जो है उसने तो क्लीन करके सारी टर्बाइन्स दे दी थी तो अब तो गैस के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे साइड से अनलेस एंड अंटिल तुमने बंद कर दिए हैं नोजल्स जो है उसके। वो कहता है, रशिया कहता है नहीं जी नहीं, ये जो आपकी नॉर्ड स्ट्रीम वन पाइपलाइन है जो कि पहले जर्मनी को जाती है और जर्मनी से फिर बाकी यूरोप के हिस्सों में जाती है, वो कहते हैं जी उसके ऊपर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो अब जर्मनी जो है उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है कि अगर इन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिया तो फिर क्या होएगा। और यूरोपियन यूनियन जो है उसको तो आज सही मानों में हाथ पैर पड़े हैं, बल्कि वीकेंड से ही जब उनको कुछ कुछ बात आनी शुरू हुई थी कि हो सकता है कि रशिया जो है पूरी तरह से बंद कर दे, तब से ही पूरे यूरोप से लोग जो हैं बाहर निकले हुए हैं। अच्छा जी, ये तो हुआ यहां पे इसका रशिया का, ये जो रॉयटर्स की खबर थी कि नॉर्ड स्ट्रीम वन जो है वो उसके उससे अब कोई भी गैस नहीं आ रही है और उनको लग भी नहीं रहा कि थर्सडे के बाद भी आएगी। अब क्या हुआ है कि जी यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, अब गैस तो उनको चाहिए क्योंकि आगे तो बड़े सर्द दिन आ रहे हैं वहां पे और सर्दी तो होती है शदीद, आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, अब जी अब इनको आ रही है मिडल ईस्ट की याद, बड़े जोर से आ रही है, बड़ी जोर से आ रही है। तो जनाब ये सारे लीडर्स जो हैं अब यूरोप से वो पहुंचे हुए हैं जी वहां पे जो है अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं डारियो मारियो ड्रैगी, वो पहुंचे हुए हैं जी अल्जीरिया के अंदर, और अल्जीरिया में कल यानी कि ट्यूसडे को उनकी डील साइन हो जाएगी। अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मजीद तबून, उन्होंने कहा है कि $4 बिलियन की यह डील होगी, यानी कि अल्जीरिया को देंगे। अल्जीरिया हैज वन ऑफ द हाइएस्ट वो जो है उसका गैस के उसके पास है तो वैसे सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट के अंदर ईरान के पास, लेकिन ईरान के साथ तो ये बात करना नहीं चाहते हैं ना।
फिर कतर
तो,
है फिर कतर भी है।
हाँ कतर, तो कतर के साथ भी बात इनकी चल रही है। दूसरी जो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वैन लेंडेर, वो अजरबैजान पहुंची हुई है, वहां पे वो प्रेसिडेंट इलहम अलीयेव से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि सदर्न गैस कॉरिडोर जो है वो उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों जो है उन्होंने जनाब दावत दी है यूएई के जो लीडर हैं पेरिस में उनको, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को, और उनको कहा जी हम आपके साथ जो है डील करना चाहते हैं फॉर हाइड्रोकार्बन्स फॉर फ्रांस एंड हाइड्रो हाइड्रोकार्बन सप्लाई के लिए, और आप क्या गारंटी करेंगे। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा जी कि हम बिल्कुल गारंटी करेंगे, पैसे आते किसको बुरे लगते हैं मुझे भाई हैं जी। तो और ये जो डील्स हैं ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स हैं। और इसके अलावा बाकी के जो कुछ लोग हैं वो जनाब कतर पहुंचे हुए हैं और वहां पे कतारियों को कह रहे हैं, कतारी प्रिंस को खासतौर पर, कि भाई तुम जो है हमारे साथ डील करो क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। कतर का बड़ा अच्छा रोल है दुनिया में है,
हमारे नजरियात मिलते हैं,
नजरियात मिलते हैं, हमारी तुम्हारी वैल्यूज एक जैसी हैं। तो जनाब ये जो है वो करें, वैसे आपको पता नहीं चला कि जो है बाइडन साहब जो हैं जिनको कि यानी कि अमेरिका का जो सबसे जो पावरफुल आदमी होता है उसको दुनिया में ज्यादा बातें शातें सुनने की आदत नहीं होती है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनको काफी बातें सुनाई हैं।
अच्छा
काफी बातें उनको सुनाई हैं,
न्यूज में आएंगी आगे।
हाँ नहीं अभी आई नहीं है वो, क्योंकि वो आरफाबाजी अब कवर कर रही थी तो मैंने कहा फिर आप उसको रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने काफी बातें उनको सुनाई हैं। उन्होंने कहा जी पायन वो जिस तरह बिल्कुल वो जो चाइना का तरीका होता है ना, जब हमारे कैनेडियंस गए थे ह्यूमन राइट्स अभी दो लफ्ज निकले थे तो चाइना ने कहा था दैट इज द डोर खुदा हाफिज बैक टू कैनेडा प्लीज, उसी तरह वहां पे अभी उसने खशोगजी भी सुना है कि नहीं कहा था, सिर्फ जमाल ही कहा तो मोहम्मद बिन सलमान ने उधर ही रोक दिया।
वो बेचारा कह रहा था माजिद जमाल,
माजिद जमाल कहने वाला था जमाल के बाद माजिद कहने वाला था लेकिन उसने माजिद पहले अगर कह देता तो उसका बचाव हो जाता, लेकिन जैसे ही उसने अभी जमाल कहा ना मोहम्मद बिन सलमान ने उसको कहा स्टॉप इट राइट देयर, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे मुल्क में जो है जो इंडिया ने कहा था, असल में वो इंडिया की लाइन जरा टो कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान वगैरह ना सऊदी, वो कह रहे हैं कि जी जैसे वो इंडिया कहता है तुम्हारे मुल्क में जैसे वो उसने उनके उन्होंने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया की ने कहा था कि तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है, कालों को तुम मार रहे हो, गन वायलेंस है, ये है, पुलिस के वो एक्सेसेस हैं, ये वही बिल्कुल स्टोरी जो है मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन साहब के मुंह पे उनको सुनाई है कि पायन ये कुछ हो रहा है आपके मुल्क में, इसलिए बिल्कुल चैने बैठो, वैसे भी आपको हमारी गैस और वो ऑयल चाहिए हैं जी। तो यहां पे भी जनाब ये हुआ है, तो वो कतर को भी कह रहे हैं कि भाई तुम बड़े अच्छे बंदे हो, वैसे हमने तुम्हारे साथ जो है बड़ा तुम्हारे साथ वो दीगा मुश्ती की, लोगों को तुम्हारे पीछे लगाया, कटाया सरों को, लेकिन वैसे हमारा बड़ा प्यार है तुम्हारे साथ है जी, क्योंकि अब हमें तुम्हारा ऑयल चाहिए है जी। जैसे कि हमने आपको फ्राइडे को सुनाई थी स्टोरी बड़ी जबरदस्त जो थी मोहम्मद बिन सलमान की के साथ, जो किंग सलमान के साथ बेसिकली जो मीटिंग थी बाइडन साहब की, जिसमें MBS बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यस अमेरिका हैज अ हाई मॉरल ग्राउंड बट सऊदी हैज ऑयल व्हाट टू डू है जी। तो ऐसे चल रहा है। अच्छा जनाब, जो रशियन कोर्ट है उसने गूगल का जो अल्फाबेट है जी, उसको फाइन किया है $373 million का, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा अल्फाबेट का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली तुम हमको जो है रोग स्टेट दिखा रहे हो रशिया को, और कॉन्स्टेंटली हमारे बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हो, हमेशा बहुत ज्यादा ये जो कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन का है उसके ऊपर वन साइडेड स्टोरी बता रहे हो और फेक न्यूज हमारे खिलाफ चला रहे हो, और हमने तुमको बहुत दफा वार्निंग्स दी हैं कि तुम इस चीज को कंट्रोल करो, मगर तुम लोग नहीं कर रहे हो, तो इसलिए अब ये हम तुमको फाइन कर रहे हैं। तो अब देखेंगे कि ये फाइन पे करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा जनाब, हमारे जो तुर्की, क्योंकि अब तुर्की नहीं रहा ना, मुल्क का नाम अब तुर्की बन गया, तो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान साहब, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, और उन्होंने भी आज धमकी दी है नेटो को। उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त आप मेंबरशिप दे रहे थे स्वीडन और फिनलैंड को, उस वक्त आपने कहा था कि ये जो मेरे कंसर्न्स हैं, यानी कि अंकरा के जो तुर्की के कंसर्न्स हैं, उनको ये देखेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि जिनको कि हम टेररिस्ट कंसिडर करते हैं, उनको ना तो आर्म्स दिए जाएंगे और ना तो उनको जो है अपने मुल्क में रखा जाएगा। लेकिन मैंने देखा है खासतौर पर उन्होंने जो है नाम लिया इनका, और उन्होंने कहा जी कि मैं देख रहा हूं कि ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं, फिनलैंड भी और स्वीडन भी, खासतौर पर स्वीडन जो है वो बिल्कुल वो सारी चीजें जिनके के ऊपर इन्होंने डील की थी और साइन किया था उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर से वीटो करूंगा, मैं इनको नहीं लेने दूंगा नेटो की जो है मेंबरशिप। और असल में नेटो की ये जो मेंबरशिप है उसका एक मेन असूल है कि अगर किसी को भी मेंबरशिप चाहिए तो ऑल 30 मेंबर्स शुड अग्री फॉर इट, तो फिर इनको मेंबरशिप मिलेगी। तो वो कहता है कि मैं इसको नहीं होने दूंगा, वीटो कर दूंगा, इनका नहीं आने दूंगा जब तक कि ये वो चीजें जिनके के ऊपर इन्होंने साइन किए हैं और अग्री किए हैं उनको ये करेंगे पूरा। तो ऐसे है। WHO के जो हैं जी डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उन्होंने आज डिक्लेयर किया है कि अफ्रीका के अंदर अब एक और इबोला टाइप की मार्बर्ग जो वायरस है वो अब फैलता चला जा रहा है, और उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है। ये आता है लोगों के अंदर फ्रूट बैट से और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। वो कह रहे हैं जी दो केसेस सामने आए थे जिनको के फिर इंस्टीट्यूट पास्टर इन डकार जो सेनेगाल में है वहां पर भेजा गया था, जिसने के कहा है कि ये इबोला नहीं है, इबोला लाइक है ये, लेकिन मार्बर्ग वायरस है, दिस कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी डेडली। तो WHO कह रहा है जी कि अब इसके फैलने का जो है वो अब खतरा
वैक्सीन ले लो जी एक और।
हाँ जी हाँ जी, एक और वैक्सीन ले लें आप तो अब उसका भी खतरा जो है वो बढ़ गया। द वायर की आज एक स्टोरी है एंड दिस इज रिटन बाय, अब ये देखो जी नाम कितना मुश्किल है ये इस जर्नलिस्ट का, अजोय आशीर्वाद महाप्रशास्त्रा
जी।
हाँ जी, ये महाप्रशास्त्रा साहब जो हैं द वायर के, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी की हेडलाइन है कॉन्स्पिरेसी रिवेंज सेंसेशनलिज्म हैव मोदी गवर्नमेंट इवेडेड अकाउंटेबिलिटी ऑन पेगासस रो। ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर वो कह रहे हैं जी कि एक साल पूरा चला गया है और सारी दुनिया को जिस चीज ने शॉक किया, सारी दुनिया की गवर्नमेंट ने जो ये जो NSGO ग्रुप का जो इजरायली ग्रुप है, इसका ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर था उसके अगेंस्ट प्रोब्स बिठाई थी, इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको ये मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर जो है स्पाईवेयर जो है इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है, बल्कि जो वो कहते हैं इनका कहना है अजॉय साहब का कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की उसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट हैज परफॉर्म द वर्स्ट अमंग्स देम, क्योंकि ये लोग बिल्कुल साइलेंट हैं और सिर्फ फ्रेंटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने सारे का सारा मलबा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे डाल दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करे और वो फाइंड आउट करे, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कोई जो है स्टेप लेने को तैयार नहीं है। इस सिलसिले में जब ये चीजें आई थी कि जर्नलिस्टों को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, एक्टिविस्ट को प्रोब किया जा रहा है इसके थ्रू, उसके बारे में फाइंड आउट किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी के ऊपर जो है वो एनक्रोच किया जा रहा है, तो ऑपोजिशन ने एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाली थी और पब्लिक मीटिंग्स भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और प्रेस को भी ब्रीफ किया था कि भाई इसके ऊपर आप कुछ काम करें। और जिस वक्त द वायर ही ने ये स्टोरी ब्रेक की थी तो बीजेपी के लीडर्स ने आके सामने आके, यानी उनका कहने का मतलब था, आए बाएं शाएं मारना शुरू कर दी थी। जो यूनियन मिनिस्टर्स थे वो कॉन्स्टेंटली डिफरेंट स्पिन दे रहे थे और वो कह रहे थे जी कि ये जो इंडिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस ऑपरेशन जिसको हम कह रहे थे उसके बारे में कह रहे थे कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारी चीजें और ये सिर्फ ये कंट्रोवर्सी है, ये कुछ नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट के खिलाफ होने के लिए लोग जो हैं ये बातें कर रहे हैं और ऑपोजिशन जो है वो जो मोदी जी की गवर्नमेंट प्रोग्रेस लेके मुल्क में आ रही है उसके खिलाफ है इसलिए ये बातें कर रही है, तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि ना तो हमने खरीदा है पेगासस, ना हमने किसी के फोन पे डाला है और ना हम किसी को ऐसे प्रोब कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत ही ज्यादा जो है निग्लेक्ट है गवर्नमेंट के पार्ट पे और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। द वायल की दूसरी स्टोरी है और इस स्टोरी के मुताबिक जो फर्स्ट डे आज मंडे का दिन जो था फर्स्ट डे ऑफ मूनसून सेशन था इसके अंदर पार्लियामेंट में और नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट और डेली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन दोनों ने आज मोर्चे निकाले हैं और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि ये जो आप लॉज लाने की कोशिश कर रहे हैं दे आर कंप्लीटली ड्रेकोनियन, क्योंकि जो आप लॉ ये पास करने वाले हैं जो कि इनको खबर मिली है डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है रोक लगाने लगी है मोदी जी की गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा जी कि जब आपने सारे प्रेस को खरीद ही लिया हुआ है अलेजली, तो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो दो चार लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो अगर आप ये इस तरह का लॉ लेकर आ जाएंगे जो कि आपने पहले भी एक दफा पास करने की कोशिश की थी 2019 में, तो ये रोक लगा देगी उन दो चार इंडिपेंडेंट आवाजों को भी जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो हैं जो उनकी गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट करती हैं। इसके अलावा जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उन्होंने ये जो जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबेर है और ये जो एक्टिविस्ट है टीटसा सतलवद जो है उसके ऊपर जो इन्होंने इनको उसको पकड़ा और उनको जेल में डाला और उनके खिलाफ जो सख्तियां कर रहे हैं उसके ऊपर भी इन्होंने आवाज उठाई है जर्नलिस्टों ने और उन्होंने कहा है जी कि दिस इज ब्लेटेंट टारगेटेड विच हंटिंग अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो ये इनको रोकने की जरूरत है। एंड जनाब द मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ द डे फोर्ब्स मैगजीन की ये इंतहाई शॉकिंग न्यूज है एंड कैन यू इमेजिन इंडिया के जो गौतम अदानी जो हैं ही हैज पिप्ड बिल गेट्स एंड ही इज नाउ द वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट मैन, एज अ रिजल्ट बिल गेट्स इज द फिफ्थ रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा जी, फोर्ब्स की जो ये जो नई बिलियनर लिस्ट आई है उसके मुताबिक जो बिल गेट्स हैं उन्होंने 20 बिलियन यूएस डॉलर्स चूंकि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन को डोनेट किए हैं उसकी वजह से इनकी जो एनुअल इंक्रीज है वो 50% जो ये कहते हैं हमने इंक्रीज करना है बाय 2026, इनकी अपनी खुद की जो फिर अर्निंग्स हैं वो नीचे आ गई हैं और जबकि गौतम अदानी जो हैं इनकी अब उनसे ऊपर चली गई हैं। वो कहते हैं जी और अब जो मुकेश अंबानी जो कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे अभी फरवरी के अंदर ही वो अब नंबर दो पे हो गए हैं, तो एशिया के रिचेस्ट आदमी इस वक्त जो है गौतम अदानी है। वो कहते हैं जी इनकी जो वर्थ है 90.1 बिलियन यूएस डॉलर से जो है वो भी ऊपर चली गई है वो भी ऊपर से भी ऊपर चली गई है, जबकि फोर्ब्स ने पहली बार गौतम अदानी को बिलियनर लिस्ट में डाला था 2008 में और तब इनकी जो वेल्थ थी सिर्फ 9.3 बिलियन डॉलर्स।
अभी आपने ये न्यूज निकाली है 90 पॉइंट क्या कहा आपने इनकी वर्थ 90.1 बिलियन डॉलर्स।
हाँ जी बताते हैं अभी आप।
तो अदानी साहब की जो है 90.1 बिलियन डॉलर्स,
यस।
कितने बजे निकाली थी आपने ये न्यूज?
नहीं वो कहते हैं कि अब इनकी जो है
90.1 बिलियन डॉलर्स
अब उससे ऊपर चली गई है ना, मैं तो वही अभी मैंने खत्म नहीं किया खबर
90.1 बिलियन डॉलर्स, मगर कितने बजे निकाली थी आपने न्यूज ये
2 बजे? हाँ 2 बजे।
अब तो बहुत ऊपर चले गए,
अब ऊपर चली गई है ना, अब 112.9 बिलियन को टच कर रही है ये। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये कर रही है, वो कहते हैं जी ये कर रही थी तो अब ये उस पर चली गई है एंड दैट्स हाउ ही हैज। वो कहते हैं जी 60 इयर्स इनकी एज है और 60 इयर्स जो है 59-60 कुछ ऐसे एज है इनकी और वो कहते हैं जी के जो अच्छा और इसके अंदर अब क्या हुआ है थोड़ी देर पहले क्या हुआ है इसमें 9.3 बिलियन और एड हो गए हैं, एज अ रिजल्ट जो भी लेटेस्ट ट्रेडिंग हुई है उसमें जो बिल गेट्स साहब हैं जो कुछ अर्सा पहले 102 बिलियन पे थे और फोर्थ रिचेस्ट थे अब वो फिफ्थ पोजीशन पे हैं और ये 112 पॉइंट जो भी है उस बिलियन से अब ये चौथी पोजीशन पे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे है। अच्छा जनाब, अब हम आपको सुनाएंगे गौतम अदानी की स्टोरी लेकिन थोड़ी देर के बाद हम एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आते हैं और फिर आपको सुनाते हैं जी कि असल में हु इज गौतम अदानी। फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सो स्टे ट्यून्ड।
Save big, big bucks. Polystream Auto Glass, windshield repair and replacement. Small chip ho ya scratch, professional staff karenge aapki windshield repair minto mein. Wo bhi insurance claim ke saath. Special chip repair promotion of $60 only. Serving in Mississauga, Milton, Oakville, Burlington or Hamilton mein. For service call today 905-818-8472. 905-818-8472.
Pizza's Pros and Wings, 6th location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, ya ho Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa, pinza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838, 905-789-8838.
Ontario is open for business and pleasure. Let us celebrate life again. Come to TD Mosaic Festival and celebrate our art, our culture, and our cuisine. Let's meet on July 22nd and 23rd for the 17th Annual Mosaic Festival at Mississauga's Celebration Square. And enjoy the award-winning festival with those who matter the most to you, your family and friends. Free admission and parking. More information, visit mosaicfest.com.
Akal Truck and Loom.
Tade truck badsha di quality service repair, oil change, wash te maintenance. Ek aur khush khabri. North American, Chinese te Korean nave te istemal shudar tires with full warranty.
Akal Truck and Loom. 1776 Mearside Drive, 905-565-1100. 905-565-1100.
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट. दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे. बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं. अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा. डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट. 905-457-8661.
फैमिली इज एवरीथिंग एंड नो मैटर वेयर दे आर इन द वर्ल्ड, कनेक्टिंग विद देम जस्ट गॉट अ लिटिल इजीियर. Now when you send a CIBC Global Money Transfer, loved ones abroad can pick it up in cash the same day at their local MoneyGram location. And with no transfer fee, you'll have more to share. It's the perfect way to help them achieve their goals. With a CIBC Global Money Transfer, family is never far away. Conditions and CIBC foreign exchange rates apply. Visit cibc.com/cashpickup.
अगर आपके घर में बेड बग्स हैं या किचन में कॉकरोचेस हैं या बेसमेंट में चूहे दौड़ते फिर रहे हैं तो उसके लिए एक ही नाम याद रखिए, बायोकैम पेस्ट कंट्रोल. हम आपको बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस बेहतरीन रेट्स पर फ्राहम करेंगे. उसके लिए डायल कीजिए 416-747-6600 या मुझसे यानी आलिजा से डायरेक्ट रब्ता कीजिए 647-848-4020.
Seventh TD Vibrant Brampton is back outdoors this year at Garden Square Brampton, July 22nd until July 23rd, sham 6 se raat 11 baje tak. Come and rejoice the Vibrant Fest with Dhoom 3 sensation singer Aditi Singh Sharma, Jazz Tami of High Heels and Geeta Zeldar of Chitte Soote, and many more local and international artists. Kids Corner, magic shows, fusion cuisines and much more for your family all 2 days. Entry and parking bilkul free. For info visit vibrantbrampton.ca.
जी साहब नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन. एंड तैयार हैं आप? देखिए आपको हमने ब्रेक दिया था ताकि अपनी चाय गर्म कर लें आप. तो चाय शाय गर्म है, आपको सब कुछ सही है. अब बैठ जाइए अपने आराम से और सुनिए कहानी. जी
हाँ जी, ये कुछ अर्सा पहले जी ये फाइनेंशियल टाइम्स ने एक स्टोरी की थी गौतम अदानी के ऊपर.
अच्छा अच्छा.
और उन्होंने फिर बताई थी अंदर की, क्योंकि हम तो अंदर बैठे हैं ना.
हाँ जी, अंदर अंदर.
तो ये अंदर की फिर हम स्टोरी लेकर
अंदर से बैठ के हम बाहर की चीजें देख रहे हैं.
हाँ, बाहर की चीजें देख रहे हैं हम.
हाँ जी, हाँ,
है जी?
हाँ
जी. तो ये इन्होंने एक स्टोरी की थी और उन्होंने बताने की ये कोशिश की है कि ये लोग हैं कौन, ये जो इतने अमीर लोग हैं. एक हमने आपको इससे पहले जो है मुकेश अंबानी की भी स्टोरी सुनाई थी, लेकिन आज हम आपको अदानी साहब की सुनाते हैं. अच्छा, बेसिकली मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, या अंबानी साहब या अदानी साहब, ये सारे बेसिकली गुजराती हैं, है जी, ये गुजरात से हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी स्टोरी शुरू कैसे होती है, इनकी स्टोरी मतलब राइज टू फेम कैसे शुरू होता है। वैसे तो ये बिजनेस फैमिली थी। 2003 में क्या हुआ था कि मोदी जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वहां पे आपको पता है कि वो जो गुजरात राइट्स हुए थे उसमें कोई तकरीबन 1000 के करीब बंदा, मोस्टली मुस्लिम्स जो थे, उनको मार दिया गया था, जिसके के ऊपर मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो आ गया था क्रिटिसिज्म, जो खुद ना सिर्फ गुजरात के बिजनेसमैन बल्कि जो इंडिया के भी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने भी जो है इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था कि एक चीफ मिनिस्टर जो है बजाय इसके कि चीजों को कंट्रोल करता, उसने ये राइट्स कैसे होने दिए गए। तो वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए। इस मौके पे ये जो गौतम अदानी साहब थे ये मोदी जी के साथ खड़े हो गए। इन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा और तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। इसने क्या किया, अगेंस्ट ऑल द एलीट कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया, इसने एक वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, अंडर द गॉर्ब ऑफ वाइब्रेंट गुजरात, एक और नई इंडस्ट्रियल बॉडी खोली इंडिया के अंदर, जिसमें कि उसने कहा कि हर वो बंदा जो कि गुजरात को ऊपर लेके जाना चाहता है, मुल्क के एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पे डालना चाहता है, नारे देखें आप, हिंदुस्तान को तरक्की की राह पे डालना चाहता है, वो इसका हिस्सा बनेगा। अब आप खुद बताएं कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा आदमी है जो नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान जो है तरक्की करे। तो इसने, और इनका नारा बड़ा सिंपल था, जो हिंदुस्तान को तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं वो वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा बनेंगे, जो नहीं चाहते हैं वो ट्रेडिशनल और दकियानूसी रहेंगे और वो हमको ज्वाइन नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट, हर वो बिजनेसमैन जो कि कहता था कि नहीं हम इंडिया को राइज होना देखना चाहते हैं, उन्होंने फिर इनका साथ दिया। अच्छा, अब क्या हुआ जी, and so like as fate had it, Modi ji became the prime minister of the country, right? आपको पता ही है कि 2013 में जो elections हुए थे उसके अंदर जो है ये prime minister बन गए, and he being the key man of Modi ji, इनको तमाम जो बड़े जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के मिलने शुरू हो गए। एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, इट ऑल स्टार्टेड विद 6 मेन एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया जो कि बेतहाशा लॉस में जा रहे थे, उनकी मैनेजमेंट बहुत गंदी थी, तो वहां पे ओपन बिडिंग की गई। अब आप देखें जरा हालत देखें आप, और आपको पता चलेगा कि कॉरपोरेट करप्शन कैसे चलती है दुनिया में, एंड इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, इट्स एवरीवेयर। 6 बड़े जो एयरपोर्ट्स थे उनके बारे में कहा गया जी कि ये तो चूंकि जो हैं ये मैनेज ठीक से गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए एक ओपन बिडिंग हम कर रहे हैं, ओपन बिडिंग कर रहे हैं, जो भी इसको बिड करके लेगा वो लेगा। एंड कैन यू इमेजिन इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पे के हजारों ही बिलियनियर्स बैठे हुए हैं, गौतम अदानी गॉट द मैनेजमेंट राइट्स ऑफ ऑल सिक्स एयरपोर्ट्स, कैन यू इमेजिन, इनको मिल गए। उसके अंदर एक क्लॉज थी जिसने इनको बचाया अदानी साहब को, उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि तुम्हारा बड़ा बिजनेसमैन होना, तुम्हारे पास जो है वो इकोनॉमिक प्रोवेस होना और तुम्हारे पास जो है कैपिटल होना जरूरी है, तुम्हें एयरपोर्ट की मैनेजमेंट आती है कि नहीं आती है, एविएशन का कोई तजर्बा है कि नहीं है इस इंडस्ट्री का, दैट डजंट मैटर। एज अ रिजल्ट He took over the management of all 6 airports. वहां पे उस वक्त जो केरला स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया, खासतौर पे जब ये त्रिनिवेंद्रम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था, और उसने कहा कि दिस इज अ ब्रेजन एक्ट ऑफ क्रूनीइज्म इन इंडिया, कि आप एक बिजनेसमैन को सारे, यानी वो एयरपोर्ट्स जो हैं वो दैट्स नॉट अ ग्रोसरी स्टोर, राइट, इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल यू नो प्रोजेक्ट। तो ये ब्रेजन क्रोनीइज्म की बेहतरीन मिसाल है इंडिया के अंदर कि आप एक आदमी को नवाज रहे हैं। एंड देन इट स्टार्टेड थर्मल कोर प्रोजेक्ट अगर कोई लगाना चाहता है गवर्नमेंट, अदानी साहब को मिल रहे हैं, कोई अगर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं अदानी साहब को मिल रहे हैं, अगर कोई वहां पे जो है पोर्ट्स लेने का मसला है अदानी साहब को दिया जा रहा है। एंड सो इन मोदी जीज टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 अब तक, जबकि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट दो बार, पहली दफा भी दूसरी दफा भी जीती है, जितने बड़े ये प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जिसके के अंदर ये $6 बिलियन सोलर पैनल्स लगाने का जो प्लांट था, जो कि इनके पास 8 GW जो है, गीगावाट जो है, जो बिजली पैदा करेगा, उसका प्रोजेक्ट भी, यानी आप देखें वैल्यू, ईच प्रोजेक्ट दैट वॉज गिवन टू हिम वॉज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट बिलियंस ऑफ रुपीज, इंडियन रुपीज, नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनको प्रोजेक्ट्स दिए गए. एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग मोदी जीज टाइम अदानीज नेट वर्थ इंक्रीज बाय कितने परसेंट माजिद भाई? 1%, 2%, 10%, 100%, 230%. And from a mere $8 billion, it went up to over $26 billion. And from there, he started acquiring other things also in India, jaise ki ports. और अब ये सुना है, ये सुना है अभी तक ये डील हुई नहीं है कि श्रीलंका की जो इतनी बुरी हालत हो गई है, तो श्रीलंका की भी कुछ पोर्ट्स ये खरीदने का अदानी साहब सोच रहे हैं. तो दैट्स हाउ ही स्टार्टेड मेकिंग. अच्छा, इसमें फिर बहुत ज्यादा इंडिया के
बिजनेसमैन, ही इज अ गुड बिजनेसमैन,
अच्छे होंगे, और तालुकात भी
एंड ही इज गॉट द
इक्विटी, और फिर वो तालुकात भी हैं उनके, तालुकात भी हैं. अब ये जो है, इसके अंदर जो हैं, जो अदानी जी हैं, इनकी ये जो मशरूमिंग एम्पायर है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ गया उसके ऊपर कि भाई जो भी बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, यानी कि जैसे अगर कोई हाईवेज के अंदर ही है, ही डजंट हैव एनी हाईवेज के का एक्सपर्टीज, राइट? एक कंपनी जो कि पिछले 50 साल से हाईवेज ही बनाती थी, उसको अब वो हाईवेज के नहीं मिल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. तो वो सारे जो अब जो बिजनेसमैन हैं इंडिया के अंदर, एंड दे शुड नॉट बी कॉल्ड बिजनेसमैन, दे आर ऑल टाइकून्स, दे आर ऑल बिजनेस टाइकून्स जो हैं, तो वो उनके अंदर आने शुरू हो गया. इसके अलावा जो अब इसमें खतरे की बात क्या है, खतरे की बात यह है कि पैसा तो इनके पास इतना नहीं था, तो बैंकों से ये पैसा उठा रहे हैं. एज अ रिजल्ट जो क्रेडिट स्वीज है, उसने 2015 में मोदी जी की गवर्नमेंट को, या क्या आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, यह बताने की कोशिश की थी कि अदानी जी जो हैं ह्यूज डेट्स में चल रहे हैं, ह्यूज डेट्स में, टू द ट्यून ऑफ $30 billion के डेट्स हैं इनके ऊपर. तो आप जरा इनको देखें, जरा इनको रोकें, क्योंकि ये डेट्स जो हैं, अगर आपके प्रोजेक्ट्स के ना पे हो सके, तो फिर आपके मुल्क के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे. बहरहाल जी, एनीवेज, वो कहती है, ये रिपोर्ट जो थी फाइनेंशियल टाइम्स की, वो कहती थी देयर इज नो स्टॉपिंग अदानी जी. अदानी जी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी चीज जो है वो एक्वायर करते जा रहे हैं. पैसा कहां से आ रहा है, नोबडी नोज, राइट? क्योंकि पैसा डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. अगर होता तो हम भी $1 million ले लेते हैं जी. तो आज की ये जो रिपोर्ट है इसकी फोर्ब्स मैगजीन की, कि इनकी वेल्थ 99 billion के पास थी, और समवेयर जो है ये वन ऑफ द richest billionaires थे दुनिया में. टुडे ही हैज ओवरटेकन बिल गेट्स. बिल गेट्स के पास 102 billion है, इनके पास जो है इस वक्त 112 billion से ऊपर पैसा है, राइट? तो लोगों के और ज्यादा भी कंसर्न्स आ गए हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है और ये कब तक सस्टेन कर पाएंगे. ठीक है जी, बहरहाल जी, ये इनकी स्टोरी है, स्टोरी, ठीक है. अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जी 5.4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया था, और इसके ट्रेमर्स जो हैं पंजाब में, केपी में, मालाकंद, स्वात, वजीरस्तान, बटग्राम, स्वाबी, आजाद कश्मीर, कोहाट, बनूर, फैसलाबाद, काफी इलाकों में जो हैं इसके वो देखेंगे, लेकिन कोई भी इसके अंदर जो है जानी नुकसान की खबर नहीं आई है. पंजाब के अंदर तो आपको पता ही है, वीकेंड के ऊपर फायरवर्क्स चल रहे थे, क्योंकि जो बड़ा ही जो था, एक जिसको बोलते हैं कि जो सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ पंजाब जो था, जिसको कि रूल करती थी शरीफ पार्टी, उसमें ऐसी तैसी फेर दी. पीटीआई ने 20 जो सीटों के ऊपर बाय इलेक्शंस पंजाब में हो रहे थे, उसमें से जो 14 सीटें हैं उनके ऊपर इन्होंने जो है इलेक्शंस जीत, नहीं सॉरी, 15 सीटों पे पीटीआई ने जीते हैं. 4 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन ने जीती हैं, और एक जो था वो इंडिपेंडेंट था, उन्होंने जीती है. ये इतनी गंदी जो है परफॉर्मेंस होने के बाद क्या हुआ है कि नवाज शरीफ साहब ने फोन किया है, आप शहबाज शरीफ साहब को भी और उसको हमजा शरीफ को भी, और उन्होंने जो फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बात उन्होंने की है. उन्होंने कहा कि फॉरन पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग मंगवाए, और उन्होंने इनको टेलीफोन किया था, और उन्होंने कहा जी कि इसके बावजूद उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वी रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन, और इसके अलावा अर्लियर जो हैं ये PMLN की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज, उन्होंने भी ट्विटर पे कहा था कि हम इस डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं विद ओपन हार्ट, और जो मैसेज का डिसीजन है उसको हम मानते हैं. अच्छा, इससे पहले जी के इमरान खान साहब जो हैं अपनी जो सारे सपोर्टर्स और कौम को जो है मुबारकबाद देते ही जिन्होंने जीते हैं पंजाब के अंदर इलेक्शन, उस पर उन्होंने उससे पहले कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए है, और वो कहते हैं कि ये उसी सूरत में पॉसिबल हुआ है ये जो हमने जीत जीती है कि लोग अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को अच्छा समझना शुरू हो गए हैं, और ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ये जो आए हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट इसका बनाया हुआ है, जब ये हमने जब से ये लोग आए हैं तो जो नेशनल एक्सचेकर है वो श्रिंक हो गया है, और आईएमएफ के साथ हमारी जो डील्स हुई थी उन सबको इन्होंने रविश कर दिया है, और वो कहते हैं जी कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जब तक वो नहीं होंगे इस मुल्क के मसले जो है वो हल नहीं होंगे, और इसके अलावा उन्होंने हमजा शरीफ को कहा है कि फौरन आप जो है रिजाइन कर दें, क्योंकि अब आपने जिस तरह से पुलिस को और सारी स्टेट मशीनरी को यूज किया है ये बिल्कुल गलत तरीका है और ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था। मरियम नवाज जो है जी उन्होंने जो है इमरान खान साहब को बड़ी धमकी आज दी है, उन्होंने कहा है कि इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, 15 सीटें जीतने के लिए आपको 20 में से आपने 15 सीटें जीती हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, और आपने जो 5 सीटें जो है फिर भी आपने लूज की हैं, है जी फिर भी आपने लूज की हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को किया क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो तुम बार बार इलेक्शन कमिश्नर को जो सिकंदर राजा साहब को कह रहे हो कि ये इनको निकालो इनको रिजाइन करना चाहिए, इसलिए कि तुम्हें डर है कि सिकंदर राजा साहब जो है ये जो तुम्हारा झूठा क्लेम है इस चीज का कि जी फॉरेन कॉन्स्परेसी हुई थी तुम्हारी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, उसको वो एक्सपोज कर देगा, तो इसलिए तुम उसको कहते हो कि ये हटे और ये जो है इनका रेजिग्नेशन, वैसे अदरवाइज तुमको नहीं चाहिए, तुम अपनी जान बचाने के लिए ये बातें कर रहे हो। शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि जो कुछ कल पंजाब में हुआ वो जाहिर है कि उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में भी फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, और हम हमेशा इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे, और अब जो है मैं पीएम को डिमांड करता हूं कि वो असेंबलीज को फौरन डिसॉल्व कर दें, क्योंकि अब वो सिर्फ जो है सीडीए के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, सीडीए मींस कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, पूरे मुल्क के नहीं रह गए हैं। पीडीआई जो है वो 4 सीटें भी ना जाने देती, अगर वो थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग अपना अच्छा कर लेती तो पीटीआई पूरी 20 सीटें जीत सकती थी, और इसके अलावा उन्होंने पीपीपी को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा जरदारी साहब तो जो है प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देख रहे थे और अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब उनको पता चल जाना चाहिए कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और असल में लोग पाकिस्तान के जाग गए हैं, उनको ये करप्ट पॉलिटिशियन अपने अब हेड्स ऑफ द स्टेट नहीं चाहिए। इसके अलावा जनाब सादिकाबाद के इलाके में इंडस रिवर के ऊपर एक बोट जा रही थी, उस बोट के अंदर सिर्फ 50 लोगों के बैठने की जगह थी, 100 लोग उसके अंदर बैठ गए, एज अ रिजल्ट जो है वो कैप्साइज हो गई, और 90 लोग जो हैं उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी बड़ा जो है इसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है। एंड द बिगेस्ट न्यूज ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वॉज द मैरिज ओवर द वीकेंड ऑफ जेनिफर लोपेज एंड बेन एफ्लिक की जो थी वो शादी थी।
गुड कपल, वेरी गुड कपल,
वेरी नाइस। हाँ जी, 2003 से ये इन एंड आउट इनका रिलेशनशिप चल रहा था। सैटरडे के दिन इनकी लेट नाइट लास वेगस ड्राइव इन चैपल, ड्राइव थ्रू चैपल जो है उसके अंदर इनकी हुई वो शादी हुई। हाँ
निकाह पढ़ लिया गया।
हाँ निकाह पढ़ लिया गया। हाँ जी, हाँ जी, अब ये जायज हो गए हैं जी। तो इन्होंने एक दफा एक शो कर रहे थे पैट ओब्रायन एज पार्ट ऑफ बेन एंड जेन अ डेटलाइन स्पेशल में, तो वहां पे उसमें बेन एफ्लिक ने पूछा था कि तुम क्या सारी जिंदगी अपना नाम रखोगी, तो जेनिफर लोपेज ने कहा था मैं हमेशा अपना नाम रखूंगी चाहे मेरी शादी हो जाए, हाँ दूसरी बात है तुम्हारे साथ होगी तो फिर मैं जेनिफर एफ्लिक हो सकती हूं। तो नाउ पीपल आर सेइंग कि अब तुम जेनिफर एफ्लिक होगी या नहीं। एंड जनाब प्रियंका चोपड़ा टर्न्स 40, और उसके साथ ही आज बहुत सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे उन्होंने इनको बहुत सारी जो है मुबारकबादें दी हैं, जिसके के अंदर आर मधावन ने इनकी और इनकी मां की और इनकी बेटी की तस्वीर शेयर की, करीना कपूर और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इनको कहा वे टू गो, तो ये आज उनको वो करती हैं। आज है 18th जुलाई, 18th जुलाई को राजेश खन्ना साहब की डेथ हुई थी, और इसके ऊपर जो है एक मेमोरी शेयर की है शर्मिला टैगोर ने, आपको पता ही है कि इनका वन ऑफ द हॉटेस्ट कपल था ऑन स्क्रीन, जबरदस्त फिल्में सफर, अमर प्रेम, आराधना और भी बेशुमार फिल्में इन्होंने की थी, 60s और 70s में बहुत हॉट इनका कपल समझा जाता था। लेकिन आज उन्होंने एक शेयर करते हुए कहा है, उन्होंने कहा जी कि मुझे वैसे तो काका बहुत पसंद, इसको काका कहते थे प्यार से राजेश खन्ना को, काका मुझे बहुत पसंद थे लेकिन 9 o'clock के शूट के ऊपर ये 12 बजे आते होते थे और मुझे बहुत देर काम करना पड़ता था, तो इसलिए कुछ फिल्में करने के बाद फिर मैंने इनके साथ काम करना छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली 2011 में इनको इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया था राजेश खन्ना साहब को और उसके एक साल के बाद इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज जुलाई 18 को लोगों ने इनको बड़ा फॉन्डली याद किया है कि ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फिल्म्स। रणवीर कपूर साहब ने भी आज एक मेमोरी शेयर की है अपने वालिद साहब ऋषि कपूर साहब के बारे में और उन्होंने कहा कि मेरा बाप जो था वो बड़ा बुली था और हमेशा जो था जो भी कोई बेचारा, जैसे कि ये जो थे फिल्म मेकर जोया अख्तर टाइप के, ये कहते थे कि तुम्हारा बाप हमेशा हाईजैक कर लेता है, कोई तो जो डायरेक्टर होते थे वो इनकी बात जो नहीं थे मानते, उस प्रोजेक्ट को तो ये हाईजैक नहीं थे करते लेकिन जो बेचारा केव इन कर जाता था तो उसको करते थे, इसलिए कि ये बड़ा उनको बुली करते थे। एंड जनाब वे टू गो बाबर आजम, अल्लाह नजरे बद से बचाए, सिर्फ 27 ईयर्स के हैं एंड ही हैज टेकन ओवर एंड ब्रोकन क्वाइट अ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे पहले तो ये कि ये इंडिया के विराट कोहली जो हैं उनसे अब आगे निकल गए हैं, ही हैज बिकम एशियाज फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स और ये इन्होंने किया जो टेस्ट खेल रहे हैं ये श्रीलंका के अगेंस्ट गालिक इंटरनेशनल स्टेडियम में, इन्होंने जो है ये हासिल किए हैं 10,000 इंटरनेशनल रन्स 228 इनिंग्स में खेल के, जबकि कोहली ने किए थे 232 और इन्होंने जावेद मियादाद का भी रिकॉर्ड तोड़ा है क्योंकि उन्होंने भी अपने 10,000 रन्स बनाए थे 248 इनिंग्स के अंदर एंड ही हैज बिकम द 11th पाकिस्तानी बैट्समैन टू क्रॉस 10,000 रन्स। ठीक है जी, दिनेश चंदीमल जो हैं उन्होंने तो जनाब बड़ा कमाल किया, श्रीलंका की हालत बेइंतहा खराब थी क्योंकि पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उन्होंने तो इनको बिल्कुल ही डेवस्टेट कर दिया था और इनका जो मिडिल ऑर्डर था वो बिल्कुल ही क्रैक कर दिया था, मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट्स ली थी और स्पिनर यासर ने 3, लेकिन फिर चंदीमल ने आके इनको जो है थोड़ा सा हरा दिया और अब इन्होंने जो है 300 जो है वो रन्स बना लिए हैं डे 3 पे, तो अब आगे पता चलेगा क्या। इन्होंने 50 बनाए और 41 रन का स्टैंड भी दिया महेश थिक शना के साथ 9th विकेट की पार्टनरशिप में पाकिस्तान के इतने जबरदस्त बॉलिंग अटैक के बावजूद। एंड जनाब नासिर हुसैन जो कि इंग्लैंड के एक्स कैप्टन थे उन्होंने आज बहुत ज्यादा तारीफ की है पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं शाहीन शाह आफरीदी एंड मोहम्मद आमिर की, उन्होंने कहा कि ये जबरदस्त जो हैं ये लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं और वो कहते हैं जी कि इंडिया जो है क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान फिर से आमने सामने होंगे तो वो कहते हैं जी कि इनको इंडिया की को मेरी एडवाइस है कि ये खेलना जो खेलते हैं जो तो ये पाकिस्तान के बॉलर्स के जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं उनसे जरा इनको होशियार रहने की जरूरत है। और वैसे उन्होंने इंडिया की तारीफ की क्योंकि इंडिया ने अभी जो फर्स्ट ODI सीरीज जो है इंग्लैंड में वो जीती थी, लेकिन आई बिलीव दैट वॉज इन 2014-15 जीती थी, तो उन्होंने उस वक्त की तारीफ की उनकी, उनके कहा बड़ी अच्छी टीम थी बट अब इनको ये पाकिस्तान का ये जो पेस अटैक है इसका ख्याल करना पड़ेगा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंग्लैंड्स ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, 31 ईयर्स इनकी एज है और अचानक से आज कोई आफ्टरनून में कुछ अर्ली आफ्टरनून में इन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि ये जो ODI क्रिकेट है उसमें अब ये नहीं खेलेंगे क्योंकि ये जो जितनी भी फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर ये खेल रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा जो है ये इंटेंस गेम है और कल का मैच तो ये खेलेंगे डरहम के अंदर क्योंकि इनका होम ग्राउंड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ये इनका 105th लेकिन फाइनल ODI होएगा। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट क्लब ने ये अनाउंस किया है। बेन स्टोक्स ने कहा कि मैं फील करता हूं कि मेरी बॉडी जो है अब वो मुझे इजाजत नहीं दे रही है और मेरे पास अब इतना वो नहीं, मुझे लग रहा कि मेरे पास
नहीं है
तो मैं सोचता हूं कि मुझे अब यहां पे टीम में रहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरे प्लेयर का हक मार रहा हूं तो मुझे हट जाना चाहिए यहां से क्योंकि वो जो वेरी वेरी एक्सलेंट स्पोर्ट्समैन तो वो कहता है मुझे हट जाना चाहिए ताकि कोई और इस टीम में और जो हमारा कैप्टन है जो रूट जो है उसकी आके जो है उसको सही जगह पे उसको अपनी टीम को लेकर जाए तो इसलिए मैं जो है रिटायरमेंट कर रहा हूं।
He's playing so well.
He's playing very very well. हां जी हां जी, लेकिन वो कहता है कि नाउ माय बॉडी इज नॉट रियली अलाउइंग मी टू प्ले इन ऑल द फॉर्मेट्स क्योंकि गेम्स बहुत ज्यादा टैक्सिंग हो जाते हैं।
टेस्ट हो गया फिर
टी ट्वेंटी
हो गया फिर
टेस्ट मैचेस हो गए
तो ये सारा देखने के लिए और स्पेशली पूरे दिन खड़े होकर खेलना पड़ता
और कई कई महीने जब ये लोग बाहर चले जाते हैं ना कई कई महीने फैमिली से दूर है क्योंकि जाहिर है जिसके तो बच्चे बड़े होंगे वो तो बीवी शायद उसके साथ चली जाएगी लेकिन जिनके बच्चे छोटे होंगे उनके लिए इतना फिजिबल नहीं है ना कि दो बच्चे छोटे उनको लेके वो उधर होटल के रूम में, वो कैसे उनको, तो अब दे वुड लाइक टू कीप देम इन द कंफर्ट ऑफ देयर ओन होम. तो फैमिली से इतना इतना दिन दूर रहना, यू नो, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट,
वेरी डिफिकल्ट.
गोरे वैसे भी जो है ना अपनी फैमिलियों से बड़ा प्यार करती हैं. हमारे लड़कों का इतना प्यार देखा ना कैसे वो हाथ पकड़ के और गले लगा के अपनी बीवियों को बैठे रहते हैं.
हाँ जी,
साढ़े
हाँ
बंदे कहते हैं दूर दूर रहते
जरूर कोई
जी वैसे अगर कोई इधर दूर दूर रहते हजूर साढ़े को लेकिन वैसे खुद जो है वो प्यार नहीं दिखाते ना. तो गोरा बड़ा पीआर दिखाता है फैमिली के साथ.
अच्छा
हाँ, तो फिर वो मिस भी करते हैं ना अपनी फैमिली देखो नहीं मंजर कैसे वो जो है हमारे बंदे तो हाथ ही नहीं पकड़ते बीवी
शर्माते हैं ना वो.
अच्छा 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 अच्छा
नहीं फिर वो भी
कुछ तो पकड़ते हैं खैर.
नहीं नहीं फिर वो ये भी बात है ना कि वो हाथ पकड़ के लोगों में जा रहे हो तो फिर कहते हैं यार ये क्या है, कैसे
हाँ,
मुसलमान है ये?
कैसे हाँ, बस ये जो मुसलमानियत पे आ जाती है ना बातें हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है
सब. अगर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स अगर आपने कुछ बात करनी है शाहिद जी से तो भाई 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है. नॉट मच बट क्विकली अगर छोटी सी कुछ बात करनी, मेरे पास है 10-12 मिनट
प्यार की बातें लेकर करनी है.
हाँ प्यार की बातें करनी है जी, हाँ. प्यार की बातें अगर प्यार
और ये भी याद रखना है कि भाई माजद भाई की हैं और बहनें मेरी हैं हाँ. इसलिए किसी ने आके शाजिया बहन नहीं कहना भाई यस
शाजिया बहन नहीं कहना भाई आपने.
हाँ जी शाजिया जी आप कह सकते हैं
शाजिया
हाँ जी.
तो ये थी आज की
खरबें
एंड पैट्रिक ब्राउन जैसे आपको पता है कि Yes, I'm going to run.
क्योंकि उसे तो मैंने मतलब ये डिसाइड नहीं कर पा रहा ना कि मैंने क्या जिंदगी में करना है, बड़े होकर मैंने क्या
यार,
बनना
जो
है?
करना होता है पीछे लोग पड़ जाते हैं उसके.
मैंने बड़े होकर क्या बनना है
नहीं तो वो बेचारा ऑन्टेरियो की वो के लिए आया था पहले तो उसको मना कर दिया कि नहीं पर केसेस हैं. बाद में उन्होंने कहा जी सॉरी कोई केसेस नहीं है जी.
तो ये जिस वक्त ये उसकी इसने बिट डाली थी कंजर्वेटिव पार्टी की उस वक्त नहीं पता था कि इसके ऊपर केसेस थे, उस वक्त इसको बिट क्यों करने दिया? अब बिट कर लिया तो काजी साइड पे हो जाओ.
हाँ जी नहीं ऐसी बात नहीं है जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम माजिद भाई, साजिया बहन कैसे हो?
अल्हम्दुलिल्लाह. कौन बात कर रहे हैं सर?
जी अल्लाह रखा.
अल्लाह रखा जी, अल्लाह ही रखा है आपको. फरमाइए.
मुबारक हो आप सबको इमरान खान की जीत पर.
ओह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी शुक्रिया आपका.
मेरा सवाल है आप लोगों से, वो फयाज भाई क्यों अभी आजकल नहीं आ रहे? क्या छुट्टी कर ली आप लोगों ने? वो सच बोल रहे इसलिए.
नहीं वो आएंगे, जरूर आएंगे हमारे साथ.
नहीं फयाज भाई हैज स्टार्टेड हिज ओन डेडिकेटेड टीवी शो विद अस ना.
टीवी शो पे आप देखा करें
वो टीवी शो है.
मुझे रेडियो पे आना चाहिए उसको, मैं देखना चाहता हूँ रेडियो.
नहीं ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी ना सर.
आई नो लेकिन लिसनर को भी तो सुनना चाहिए ना आपको.
नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मैनेजमेंट विल डिसाइड. ही इज डूइंग हिज ओन वेरी
डेफिनेटली पार्ट ऑफ आवर टीम एंड वक्त फवक्त आप देखेंगे उनको यहाँ आते हुए. बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
हेलो अस्सलाम वालेकुम सर.
कौन बात कर रहे हैं सर?
शेर खान बात कर रहा हूँ सर.
अच्छा शेर खान साहब, सारे अल्लाह रखा हुआ शेर खान जा रहे हैं
आप. नहीं सर देखें ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि शेर हार गए हैं वो जो नारे लग रहे थे ना
वो शेर असल बात है वो शेर है ही नहीं ना. अच्छा शेर नहीं हारता.
ये आपने नाम इसलिए रखा कि हमको डराया जाए?
लेकिन हम नहीं डर रहे.
सर मैंने आपको जो है ना, देखो आपकी प्रोग्राम में सुन बहुत मजा आता है, सिर्फ एक दिन मुझे मजा नहीं आया और बहुत गुस्सा आया.
ओ
किस दिन?
लास्ट वीक में जो आप लोगों ने एक मौलवी को आप लोगों ने बुलाया था.
हाँ. छोड़ो यार, किसी और की बात ना करो.
चलो हमारे से प्यार की प्यार दिया गल्ला साढ़े नाल करो
हमारे साथ.
अच्छा जी ये बताएं, अच्छा जी शेर खान साहब दिल तो आपका पता नहीं है मुझे शेर जैसा बड़ा है कि नहीं, हमारे लिए समोसे और जलेबियां कब ला रहे हो? अच्छा गलते आओ तुम.
नहीं शाहिया जी, समोसे और जलेबी की जगह तो आप रहते हैं ना.
अच्छा
ब्रिमटन और मिश्रा का, मैं तो पिकरिंग में रहता हूँ यार, तो कुछ है ही नहीं.
अच्छा अच्छा तो पिकरिंग जो है वो मरीख पे है के वहां समोसे और जलेबी नहीं मिलती.
नहीं आप एक काम करें ना, इधर अभी एक बहुत शॉपिंग मॉल अभी खुल गया मेमन.
अच्छा
तो हाँ तो उधर मिलते हैं तो बिल्कुल आपके लिए लेके आएंगे आएंगे आपकी तरफ ना।
बहुत शुक्रिया,
पता चल गया आप कितने बड़े दिल के शेर हैं।
थैंक यू, थैंक यू,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, लास्ट हेलो, हेलो नो नेक्स्ट। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम साहब।
जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर?
सर जी, सर जी मैं फयाज ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब पूछ रहे थे कि फयाज है ही नहीं, मैं फयाज अली बात कर रहा हूँ।
अच्छा
मैं बहुत अच्छा किया आपने, राजन भाई के भाई आपने बहुत अच्छा किया। आपने कमी पूरी कर दी।
मैंने क्या बता दूं जी, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ।
वेरी एक्सीलेंट,
बिल्कुल खुश हूँ कि जी चलो अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी है।
नहीं नहीं,
फयाज भाई आप, आपकी आवाज सुन ली हमने, बस बहुत दिल को खुशी हो गई,
हम भी बहुत खुश हो गए।
हम चाहते हैं
जी थोड़ा सा तबसरा उस पर नहीं किया आपने, जो रशियन के नए करंट जो हालात क्या है?
हाँ वो सारी उन्होंने वो चेंज कर दिए ना, बहुत सारे अपने वो लीडर्स, हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि रशिया में उन्होंने बहुत सारे अपने लीडर्स जो है उन्होंने चेंज कर दिए, मुझे लगता है उनसे इम्प्रेस होकर यूक्रेन में भी बहुत सारे लोगों को चेंज कर दिया ज़ेलेंस्की साहब ने। लेकिन रशिया के तो हालात ठीक है, आज भी पुतिन साहब जो है उनका तबसरा आया था, उन्होंने कहा कि आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते हैं रशिया को, और अगर आपने हमें ज्यादा पुश करने की कोशिश की तो हम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब उसने थोड़े थोड़े इंटेंसीफाई कर दिए हैं अटैक्स जो है यूक्रेन पे, तो यूक्रेन की काफी असल में जो है ना ये बिलावजह जो है ना इनकी